તારીખ 1/4/1991 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 117 509 અને 385 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું પાવાપુરીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 12
તેની સાથે ત્રણ પ્રશ્નો છૂટા લખ્યા છે, તે પણ પ્રાપ્ત થયા છે. જે ત્રણ પ્રશ્નો લીધા છે તે પ્રશ્નો મોક્ષું જીવીએ વિચારવા. અને મોક્ષો કે ભૂમિકામાં અસો પ્રશ્ન વિચાર કરવા હિત કરવા. શરીર પદાર્થ જુદા હૈ, પરંતુ સંબંધપણે સહચારી જબ તક જીવ કા કર્મ કા જીવ કો કર્મ કા ભોગ હૈ વહાં તક સહચારી હૈ. उस देह के माध्यम से उसको पूर्व करने का भोगना साकार साकार वहां तक उसका संयोग है. श्री जिन ने जीव और कर्म को कर्म का क्षीर नील की वत संबंध कहा है, उसका हेतु भी यही है कि क्षीर और नील, क्षीर मेरे दूध, क्षीर और नील एकत्र हुआ स्पष्ट दिखता है, फिर भी परमार्थ से वे जुड़े हैं, परमार्थ बने भिन्न है. अग्नि के प्रयोग से फिर ये स्पष्ट जुड़े पड़ते हैं. वैसे ही जीव और कर्म का संबंध है. कर्म का मुख्य आकार किसी प्रकार से देह है, दो कर्म है. कर्म का मुख्य आकार किसी प्रकार से देह है. कोई पतला है तो कोई इसी प्रकार का कर्म है उसका, कोई मोटा है तो उसी प्रकार का कर्म है. ऐसे जो भी देह का स्वरूप है वो किस प्रकार के कर्म बांधे हैं ये सूचित करते हैं. भूतकाल में कैसे कर्म बांधे छाता को भूलता है शरीर, तो वही कारण है उसके कर्म का उदय. जैसे रसोई घर में रसोई बनती है तो एक का वजन बढ़ जाता है, दूसरे का बढ़ाना है फिर भी नहीं बनता है. एक ही रोटी खाते हैं, एक ही चावल खाते हैं, एक ही घर में बने अलग अलग परिणाम होता है पूर्वक. कर्म का मुख्य आकार किसी प्रकार से नहीं है. जीव है ऐसा सामान्यपणे कहने में आता है. जो भी इंद्रियों से क्रिया कर रहा है उससे वहां जीव का अस्तित्व है, ऐसा सामान्यपणे माना जाता है. बोलता है क्रिया कर रहा नहीं लिखना जाता है, परंतु ज्ञान दशा आए बिना जीव काया का जो स्पष्ट जुदापना है वो जीव को भाष्यमान नहीं होता. ऐसे पता चलता है कि जीव और शरीर जुदा है, फिर भी ज्ञान दशा आए बिना इसका भिन्नपना यथार्थ रूप से मालूम नहीं पड़ता. तथापि क्षीर निर्वत जुदापना है, ज्ञान संस्कार से वह जुदापना बिल्कुल स्पष्ट वर्तता है. अब वहां ऐसा प्रश्न किया कि जो ज्ञान ज्ञान से जीव और शरीर जुदा जाना है तो फिर वेदना का वेदना पर मानना किस प्रकार से होता है। जैसे कोई ज्ञानी है, जानता है कि अपना शरीर और जीव अलग अलग है, बिल्कुल भिन्न पदार्थ है, फिर उसको वेदना होती है, वेदना को वेदते हैं, सब प्रत्यक्ष दुख नहीं होता है, मानता भी है कि वो वेदना है, असाता वेदना को असाता वेदना नहीं मानता है, सता को साता नहीं मानता है, वो कैसे होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न अवश्य होता है, ये प्रश्न यद्यपि होता है, तथापि उसका समाधान इस प्रकार है, ऐसा करके समाधान इसी प्रश्न का दिया है। तो जैसे सूर्य से तप्त हुआ ऐसा पत्थर, उस सूर्य का अस्त होने के बाद भी अमुक समय तक तपा हुआ रहता है और फिर स्वरूप को मैंने ठंडा हो जाता है, कुछ टाइम पर वो गर्म दिखता है तो बाद में स्वयं ठंडा हो जाता है। वैसे पूर्व के अज्ञान संस्कार से उपार्जित किए हुए ऐसे वेदना आदि ताप, उसका इस जीव से संबंध है। ज्ञान योग के कोई हेतु होने से बाद में वो अज्ञान का नाश होता है और इसलिए उत्पन्न होने वाला, इससे उत्पन्न होने वाला ऐसा भावी कर्म भी नाश को प्राप्त होता है, परंतु वह ज्ञान से उत्पन्न हुआ ऐसा जो वेदनीय कर्म है वह अज्ञान के सूर्य के पेठे, अज्ञान रूपी सूर्य के वत अस्त होने के बाद भी पत्थर रूप ऐसे इस जीव को संबंध में है जो आयु कर्म का नाश से नाश होता है। वेद उतना है कि ज्ञानी पुरुष को काया में शरीर में आत्मबुद्धि नहीं होती और आत्मा में शरीर की बुद्धि नहीं होती, दोनों स्पष्ट भिन्न उसके ज्ञान में वर्तता है। मात्र पूर्व संबंध जैसे पत्थर और सूर्य का ताप का प्रसंग है, उसी तरह होने से वेदनीय कर्म आयुष पूर्णता तक अविषम भावे भी अविषम भाव मैंने संभाव से वेदना होता है, वेदना को वेदना जानता है भिन्न रूप से, अपने को एकत्व बुद्धि से अनुभव नहीं करता है वेदना। एकत्व बुद्धि पूर्वक जो राग द्वेष होता है वो विषम भाव है, पर भिन्न होकर के जो जान लेता है कि वेदना कम है या ज्यादा है, वैसी है जैसा वैसी है जिस प्रकार की, उसे जानने का ज्ञाता भाव से होता है, ज्ञाता भाव को अवश्यम परिणाम हो गया। परंतु वह वेदना, उस वेदना को वेदते जीव को स्वरूप ज्ञान का भंग नहीं होता। मैंने चारित्र मौका थोड़ा मामूली राग होता है, फिर भी स्वरूप ज्ञान का नाश नहीं होता है, तो उसमें लिया है राजमंदिर ने अपनी टीका में कि उतना जो चारित्र मोह है ज्ञानी को, इससे थोड़ा राग दिखता है, द्वेष दिखता है, मोह दिखता है चारित्र, तो जीव के परिणाम को अशुद्ध करने में समर्थ नहीं है, मलिन करने को समर्थ नहीं है, ऐसा लिया है। उतना राग जो है वो तो इनके परिणाम को अशुद्धि कर दे रहे, इतने सामर्थ्य उसमें नहीं है, इसलिए ज्ञानी अबद्ध है। तो वहां से वो बात ली है, उन्होंने अस्थि से बात ली, तो जो स्वरूप ज्ञान उत्पन्न हो गया है वो स्वरूप ज्ञान का नाश नहीं करता, वेदना को अनुभव करते हुए आत्मज्ञान का नाश नहीं करता। भले ही वेदना को अनुभव करते हैं वेदना के रूप में, फिर भी आत्मज्ञान तो चालू रहता है, आत्मज्ञान का नाश होकर वेदना का वेदना नहीं होता है, स्वरूप ज्ञान का भंग नहीं होता। अथवा जो होता है तो उस जीव को ऐसा स्वरूप ज्ञान संभवित नहीं, वहां स्वरूप ज्ञान का अभाव हो गया, नाश हो गया, तीव्र वेदना में कोई आ गया पर एकत्र भाव से मोह लिया वेदना का तो स्वरूप ज्ञान से चल गया। वास्तव में तो स्वरूप ज्ञान का बल इतना है उचित नहीं होते, फिर भी किसी ने ऐसा किसी परिणाम को किया था स्वरूप ज्ञान आत्मज्ञान हमारे वेदने कर्म नाश हो जाए ऐसा कोई जीव नहीं, ऐसा कुछ सिद्धांत नहीं, तो अपनी स्थिति को आपने के बाद नाश होता है, तो स्थिति दूंगी वेदनीय कर्म के ऊपरी होने के बाद उसका नाश होगा। सुना यह कर्म ज्ञान को आवरण करने वाला नहीं, ये वेदनीय कर्म है वो ज्ञान को आवरण करने अघाती है, इसलिए वेदनी गोत्र नाम आयु वो चार जो है वो तो ज्ञान को आवरण करने वाला नहीं, यह कर्म ज्ञान को आवरण करने वाला नहीं, अव्यवाधपना को आवरण रूप है, उसमें अव्यवाधत्व है तो उसमें आवरण होता है, ज्ञान में ज्ञान को आवरण नहीं होता है, वो प्रतिजीवी है, प्रतिजीवी गुण है, अव्यवाधत्व है वो प्रतिजीवी गुण है, ज्ञान अनुजीवी गुण है, अनुजीवी गुण को घात नहीं करता। अथवा जहां तक वो वेदनी कर्म है वहां तक संपूर्ण अव्यवाधपना प्रकट नहीं होता, परंतु संपूर्ण ज्ञान साथ उसका विरोध नहीं, संपूर्ण ज्ञान है तो फिर भी वो चालू रह सकता है, अरियन दशा में भी चारों आकाती है तो उसका कोई विरोध नहीं है, संपूर्ण ज्ञान होने तक ज्ञान दशा में हो गए और केवल ज्ञान दशा में भी होता है, कोई विरोध नहीं है। संपूर्ण ज्ञानी को आत्मा अव्यापाद है ऐसा निज रूप अनुभव वर्तता है अवश्य, तथापि संबंध पड़े देखने से इसका अव्यापादपना वेदनीय कर्म से अमुक भाव भाव से रुका हुआ है, संपूर्ण अव्यापात तो सिद्ध दशा में नहीं होता है तो कुछ अंश में वो रुका हुआ है, वेदनी का उदय है जैसे समुद्र में कोई जहर का बूंद डाल दे या सरोवर बड़ा हो उसमें जहर का बूंद डाल दे तो उस पानी पीने से कोई मरने वाला नहीं, सारा सरोवर में कोई पॉइजन का बूंद डाल दे तो उस पानी से कोई मरने वाला नहीं, पर उतना बड़ा वॉल्यूम है इसमें एक बूंद उसमें कोई असर नहीं कर रहा, ऐसा वेदनी का हिसाब लिया है, अशाता वेदनी का उतना हिसाब संपूर्ण ज्ञानी को आत्मा अव्यवाद है ऐसा निज रूप अनुभव वर्तता है, अनुभव में तो संपूर्ण अव्यवाद है तो विषय होता है, तथापि संबंध देखने से अव्यवाद है तो वेदनीय कर्म से अमुक अंश में रुका हुआ है, यद्यपि वह कर्म में ज्ञानी को आत्मबुद्धि नहीं होने से अव्यवाद गुण को मात्र संबंध आवरण है साक्षात आवरण नहीं है, न स्पष्ट किया है, अनुभव में तो संपूर्ण अव्यवाद तो केवल को अनुभव में आता है तो थोड़ा संयोग रूप में आवरण है अव्यवाद अनुभव में तो वेदना का अनुभव करते जीव को कहीं भी विषम भाव होना यह अज्ञान का लक्षण है, परंतु वेदना है सो अज्ञान का लक्षण नहीं है, ज्ञानी को वेदना हो सकती है। विषम भाव होना ये अज्ञान का लक्षण है, वेदना का होना वो ज्ञान का लक्षण नहीं है। वेदना तो ज्ञानी को हो सकती है लेकिन विषम भाव नहीं होता।
देह से एकत्व का नाश होने के बाद भी बाह्य क्या लक्षण है, तो कोई अंतर समझ में आए। क्रिया तो दर्द का
वेदना का भी तारतम्य भेद देखे तो असंख्य प्रकार है। मंद वेदना, तीव्र वेदना, तीव्रतम, तीव्रतर वेदना, तीव्रतम, तो स्थान के हिसाब से जितना पुरुषार्थ है उतना जो है सामने भाव रहता है और विषम परिणाम रहता है। तुम पुरुषार्थ कुछ विषमता होती है, जैसे मुनि दशा है। मुनि दशा तो इतनी प्रचुर स्वसंवेदन वाली है, जिसमें मुनिराज को ये है कि नहीं ये उसका पता नहीं रहता है, इसलिए वो जो ऋतु का प्रकोप है परिणाम में संभव। लेकिन कभी कभी ऐसी वेदना होती है अपनी दशा में कि उनको भी ये दशा में रहने में दिक्कत हो जाती है, तो उनको जब पता चल जाता है ये शरीर की परिस्थिति है वो काफी मात्रा में बिगड़ रही है, तो ऐसे ही फौरन वो संथारा ले लेते हैं। संथारा लेने के बाद संथारा ही क्या संलेखन, तो अन्न पानी का त्याग कर दिया। जहां तक आयुष हो वहां तक प्रतिज्ञा लेंगे। अब कह रहे कि इसका मतलब यह नहीं कि वेदना का उदय मिट जाए, फिर भी वेदना बढ़ती जाती है। तो दूसरे जो मुनि हैं, आचार्य हैं, तो वो नियमित रूप से उनको उपदेश करते हैं। तो वेदना बहुत होगी फिर भी अपना धर्म से विचलित नहीं हो रहा है, तो उस मामला को देख करके ये पता चलता है कि वेदना के भी कुछ इतनी हद हो सकती है। वहाँ मुनिराज को भी वहाँ दूसरे मुनि का और आचार्य का सहारा मिलता है, कोई टिक पाता है कोई नहीं भी टिक पाता, ऐसा हो सकता है। तो ये वेदना का भी बहुत प्रकार है। जैसे सातवें नरक में भी इतनी वेदना है लेकिन शायद समय दृष्टि को अध्यात्म नहीं होता, इतनी वेदना कहीं मनुष्य में नहीं हो सकती। फिर भी वहाँ वेदना वेदने के लिए शरीर जो संवेदन है वो मजबूत रहता है, तो मनुष्य भाव में नहीं होता। तो जिस माध्यम से वेदना का अनुभव करना है उस पर भी थोड़ा बहुत उसका आधार है। ऐसे दो तीन इसके पड़खे ऐसे हैं, उसमें किस हालत में क्या होता है तो उसको देखते हुए यानी सावधानी तो अवश्य कर लेते हैं, अवश्य कर लेते हैं। तो चालू सहज रूप से बढ़ जाता है
नहीं ठीक है, मतलब प्रसाद
तो कोई नियम नहीं है उसका। वैसे तो आत्मबल ही बलवान है, फिर भी कभी किसी को क्या हो गया कह नहीं सकता। दर्शन हो तो चित नहीं हो जा रहे इसलिए तो उनको उपदेश देते हैं मुनिराज को भी, देखिए आपको तृषा लगी है, इतनी तृषा लगे तृषा के वेदना इतनी हो, उनको ये कह रहे हैं कि कि हमारे आत्मा ने इतना पानी पिया है कि समुद्र के समुद्र खाली हो जाए, क्या रखा है उपयोग नहीं देना है, वेदना के प्रति उपयोग ही नहीं देने का, ऐसा उपदेश देता है।
शुरू ज्ञान तो चल रहा है हमारे, फिर ऐसा इस तरह का वेदना का इफेक्ट होता है उसमें
चारित्र मायने का होता है, चारित्र में जितना है उतना तो असर आता ही है।
अध्यास तो
नहीं, अध्यास नहीं होता है, लेकिन होने की संभावना देख करके ना उपदेश दिया जाता है। संभावना इसलिए देखे कि कोई विचलित हो भी जाते हैं, तो कैसा ऐसा बनता हो ऐसा समझ करके तो पता
है। अध्यास के अभाव के हिसाब से जैसे ज्ञानी वेदना को भेजता है और एक ज्ञानी वेदना को भेजता है, एक ही तरह प्रकार की वेदना है।
तो उसमें
जाति भेद कहा जाता है,
ऐसा तो मनोबल वाले होते हैं, ज्ञान क्या मनोबल वाले भी इतनी ताकत रखते हैं, मनोबल होता है ना उनके मत में भी ऐसे होते हैं। टॉलरेंस की पावर ज्यादा होता है, आत्मबल तो इससे भी बलवान है, फिर भी वेदना इससे भी बलवान हो सकती है। वेदना में बहुत भेद तत्व में भेद बहुत है, तीव्र वेदना इससे भी तीव्र, इससे भी तीव्र, ऐसा बहुत भेद है।
बाहर से असाध्य दिखते हो, बेसुध दिखते हो,
चेष्टा है बोलने की बंद कर देते हैं। जब उनको एक ही काम में लगना है और तीव्रता से लगना है तो दूसरी दूसरी प्रवृत्ति तो वैसे ही बंद हो जाती है, तो बोले नहीं, आँख खोले नहीं, तो दूसरों को क्या लगे। बोले तो पता चल जाए। तो बनारसी दास को जो है बोलने की शक्ति नहीं थी, आया भाषा युग छूट गया था, तो वैसे ही पड़े थे। तो फिर जो इनके अगर बोल के लोग इकट्ठे हो गए जो भी तो संसारी लोग थे, पंडित जी का जो है देव नहीं छूट रहा है, काफी टाइम से ऐसे पड़े हुए हैं, बोल नहीं पाते हैं, मतलब इसका जीव जो है कहीं और लेकिन मतलब में गया है ऐसा दिखता है। तो क्या संसार में ये मान्यता होती है कि जब किसी का जीव तीव्र हो तो उसे किसी पदार्थ में रुकता है तो उसका देहांत तो नहीं होता जल्दी से, दुखी होता है। तो ऐसे आपस में चर्चा करने लगे कि उसका जीव कहाँ रुका है, तो इसका समाधान कर दें उसको। तो सुनते थे बराबर, बोल नहीं सकते थे, तो उनको ये पता चल गया कि ये लोग गलत धारणा में है, तो उसने फिर लिख के बताया कि मैं मेरे सबूत में बिल्कुल सावधान हूँ, अब तो बनारसी दास चले चल जाएंगे, फिर नहीं आएंगे इधर। ऐसे कभी ऐसा होता है प्रश्न तो पता चल जाता है, बहुभाग तो जिसको पता चल गया कभी आयु पूर्ण होने का समय नजदीक है तो अपने काम में करना चले जाता है। बार बार को क्या दिखे क्या नहीं दिखे, कोई अनुमान कैसा करे, कोई अपने तरह कैसा उसे कोई दरकार नहीं है, इसकी चिंता करनी वो नहीं करेंगे, तो दूसरा क्या सोचेंगे इसका जो सोच करना।
इस समय जो मोक्ष है मेरे ज्ञानी को पहचाना है, ऐसा ही कोई मोक्ष वहाँ उस समय सेवा में है जिसने ज्ञानी को पहचाना है, और ऐसी स्थिति में जो उसकी वाचा वगैरह बंद हो जाती है, बेभान जैसा दिखने लगता है, चेष्टा भी बेभान जैसी दिखती है, तो वो उसकी पहचान पर वो शंका नहीं हो ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है?
जिसको प्रतीति है उसको तो ऐसी प्रतीति है कि इससे भी कोई अधिक वेदना होगा तो उसको तो अपने मार्ग से विचलित होने वाले नहीं है, तो फिर बाह्य चेष्टा से उसको शंका होगी नहीं। जैसे विश्वास है जिस तो जिसका वो तो उसको तो शंका होगी नहीं, कुछ ही देखा लिखा हो उसकी पहचान है। तो पहचान का मतलब क्या होगा? शंका नहीं हुए इसी का नाम तो पहचान कर बात चल। शंका नहीं पड़े इसी का नाम तो पहचान, शंका पड़ती है इसका मतलब पहचान नहीं है।
तो स्पेसिफिक कोई लक्षण और सामने है
कोई जरूरी भी नहीं, बाह्य लक्षण कोई आवश्यकता भी नहीं।
मतलब शंका है कि योग पर कोई
इसका जरूरी कैसा भी हो परिस्थिति बाहर में कैसा भी हो उसका कोई नियम भी नहीं सिद्धांत भी नहीं, किसी का कैसा हो किसी को कैसा हो किसी को कैसे। जैसे श्रीमद जी के बारे में ये सुना है तो उनको पता चल गया कि भाई कुछ आधा घंटा घंटा रह गया है, तो अपने भाई को बोला मुझे उठा के, खुद तो उठ नहीं पाता उठा के उधर रख दो, ये जो बमानिया में जो शहर है आराम शहर जिसको कहते हैं आराम से थोड़ा आधा सोना आधा बैठा है सर ढलन से सुना मुझे ले लो, तो ले लिया उनको उठा कर फिर वो पतला सो कपड़ा था उसने वो किया बोल दिया मुझे किसी को बुलाना नहीं, मैं अपने आत्मा में स्वरूप स्थिति में चला जाता हूँ, मुझे किसी को बुलाना नहीं, डिस्टर्ब मत करो। तो सूचना दे दी तो फिर जो है उनका जो शारीरिक पोजीशन बिगड़ने लगी, तो किसी को प्राण छूटने के पहले पहले गले में से आवाज निकलती है, और वो आवाज ऐसी होती है कि जैसे वो बकरा बोलता है उसी टाइप का आवाज में विचित्र प्रकार का आवाज होता है। किसी को ये लगे कि उसको क्या कोई वेदना सहन नहीं होती है इसलिए ऐसा हो जाता है क्या, तो ऐसी बात नहीं है। शरीर का कैसा भी दिखा हो जाए जब वो खुद सावधान है तो कोई आपत्ति बन सकता
है। का लक्षण जानने के लिए उसको अपनी पात्रता के विषय में जानना, जो उसकी पात्रता ही इतनी बढ़ेगी तो अपने आप को सारी ही बातें जो उसमें जो पता चल
ध्यान तो उसको देना। मुमुक्षुओं को ऐसा विचार आता है कि हम ज्ञानी को कैसे पहचाने, लेकिन क्षमता आती है तो ये सवाल नहीं रहता, और क्षमता नहीं होवे और पहचान करने का कोई प्रयास करे तो कोई पहचान थोड़ी हो जाएगी। इसलिए कोई इच्छा का विषय नहीं है कि हमको पहचानना है कैसे पहचानना है, सवाल तो ऐसा आता है प्रश्न तो ऐसा है वैज्ञानिक को कैसे पहचाना जाए कैसे पहचाना जाए, सीखने की चीज़ है। सर क्षमता की क्षमता नहीं है तो कहते हैं तो बहुत सी बातें सीखो फिर भी अपनी नजर नहीं है तो कैसे
कितना
भी
तीव्र है कितना भी तीव्र है पर मेरे ज्ञान में तो प्रवेश नहीं है, ये ज्ञान तो उनको बरकता रहता है
तो अनुभव ज्ञान
ये तो अनुभव उनको
जिस ज्ञान का उनको अनुभव है उस अनुभव में वो वेदना का अस्तित्व नहीं दिखता, अस्तित्व है नहीं तो उसका अनुभव भी नहीं है।
उसी समय में ये वेदना फिर देखते हैं ये एक अपने को किसी भ्रम अध्यास जैसे भ्रम जैसे लगता है या किस तरह से ये
किसको
ये ज्ञानी जो इसको बेचते हैं फिर किस तरह का उनका भाव ये दोनों भाव किस तरह से चलता है?
बिल्कुल अलग है, ज्ञान धारा अलग है कर्म धारा अलग है, इसी के परिणाम जो कर्म धारा जिसको बोलते हैं
उसमें ये
उसमें वेदना है, ज्ञान धारा में वेदना नहीं।
वेदने के प्रकार में विस्तार करने का भी ऐसा अंतर होता है या कोई जाति भेद होता है? अज्ञानी जैसे भेद दिखता है,
जाति भेद से दोनों के परिणाम में जाति भेद तो है। सबसे बड़ी बात है कि भिन्न बना है, जहाँ अपने अपना अस्तित्व का अनुभव ज्ञान समेत ज्ञान भजन के साथ साथ अपना अस्तित्व का ग्रहण होता है, उसमें विघ्न का अभाव है। जो परिणाम जितना भी उचित होकर के जाता है उसमें विघ्न का अभाव है। बाहर वाला तो कोई चेष्टा से पता चलता है, अंदर की तो कोई चेष्टा बाहर में आती नहीं तो उसका पता नहीं चलता है। लेकिन मुख्य परिणति तो अंदर वाली है, बाहर वाला है मुख्य परिणाम। एक परिणाम के दो भाग तो हो गया, दृष्ट भाव में जानते हैं रूप से, और जितना अंश में मोह है जितना अंश में द्वेष है उतना अंश में विजन भी है। हिसाब किताब के बाद माता भाव के जो परिणाम है उतने मुख्य है, इसके भाव में वो विजन के परिणाम इतने गौण है, इसकी मुख्यता दिखाने तो ऐसा भी कह सकते हैं तो इतना तो वित्त ही नहीं है, सिर्फ ज्ञाता है मात्र ज्ञाता है ऐसा कह सकते हैं, अल्प मात्रा में ऐसा बोलने में। हिसाब किताब की बात अलग है, मुख्य गुण दर्शाने की बात अलग है। हिसाब किताब तो कर्म योग से होगा, अध्यात्म में हिसाब किताब ऐसा नहीं रहता। वेदना होने पर विभाव होना वो ज्ञान का लक्षण है, परंतु वेदना है सो ज्ञान का लक्षण नहीं, क्योंकि तो मन दशा में नहीं होती है, पूर्व उपार्जित अज्ञान का फल है। वर्तमान ज्ञान रूप नहीं है, पूर्व उपार्जित अज्ञान का फल है। वर्तमान में वह मात्र प्रारब्ध रूप है, उसको वेदते ज्ञानी को अविषमपणा है। अर्थात जी और शरीर जुदा है, ऐसा जो ज्ञान योग क्या बोल लिखा जो स्पेसिफिक शब्द बना देते हैं, गुजराती भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो उन्होंने स्वतंत्र बनाया है। ऐसा जो ज्ञान योग वो ज्ञानी पुरुष का अबाधित रहता है, अबाधित ही रहता है, उसी को ज्ञान कहते हैं।
कर्णादि योग की पद्धति से तो अगर देखें चर्चा हुई थी 41 कर्म प्रकृति और 10 कर्म प्रकृति तो चौथे संस्थान में पूरी हुई थी, एक शुरू में और एक अंत में, 41 प्रारंभ में और 10 बाद में, पांचवें गुण स्थान में तो बहुत नगण्य है, छठे गुण स्थान में नहीं बद, सातवें गुण स्थान बंद और विच्छेदी बहुत नगण्य है। तो सारा का सारा कार्य जो करना था वो तो चौथे गुण स्थान में कर चुके हैं, छठे सातवें करने की पद्धति से कुछ होता ही नहीं है, वो तो भोगने का स्थान वेदने का स्थान हो गया था, ज्ञान वेदन करते हैं मोटे में मोटा काम तो यहाँ हो जाता है।
कर्णन योग को तो सामान्य आदमी को तो कोई प्रचलित विषय नहीं है, प्रचलित बात क्या है, को ज्ञानी है उसको रोग हुआ उसका अनुभव करता है, हमारे जैसा दिखता है अब ज्ञानी पढ़ा कैसे, उनको तो क्या ज्ञानी पढ़ा वैसे उनको देखने की क्षमता कहाँ है, ये तो प्रश्न से सवाल है, ऐसा मत करो तो उसको चिंता रहेगी तो क्षमता हो ही नहीं।
जो मेजर काम जहाँ हो गया वो दशा ख्याल में नहीं आती, और बाहर में स्नान का भेष परिवर्तन हुआ वो दशा ख्याल में आती है, विचित्र टाइप की चीज हो गई।
विचित्रता तो बहुत प्रकार की हो सकती है, मूल चीज जो है उसकी पहचान हो तो संतान प्रतिक्रिया भी तो संतान प्रतिक्रिया तो शंका होने वाली है विचित्रता के कारण। वो तो शास्त्र इसलिए रचना किया, इस बात को प्रसिद्ध करने का यही कारण है। समझने से तो और बल मिलता ही रहे, फिर भी वो पहचान नहीं है।
छोटे स्थान में इतना बड़ा काम
121 में से 41 प्रकृति चल जाती छोटे
जाएगी पूर्व 10 वर्ष ली जाती है काम चली गई छोटे छोटे स्थान
जो भी पीछे रही जितनी वो तो उसका कोई जोर तो है नहीं बल तो है उसमें
अधिकतर पुण्य
प्रकृतियां ऐसा कोई बता ही नहीं कमर टूट गया जैसे कमर आप टूट गया वो क्या काम है इसलिए जिसको पहचान है उसकी तो ये दृष्टि खत्म हो जाती है उसको ये फायदा है ये बात उसको वो बात उसकी नजर में रहती ही नहीं उनको कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा जो ज्ञान योग वह ज्ञानी पुरुष को बाधित ही रहता है मात्र विषम भाव रहित पड़ा है यह प्रकार ज्ञान को अव्याबाध है। इस प्रकार से ज्ञान को अव्याबाधत्व है विषम भाव है वही ज्ञान का बाधा कारक होता है। देह में देह बुद्धि और आत्मा में आत्मबुद्धि देह से उदासीनता और आत्मा में स्थिति है ऐसे ज्ञान पुरुष को वेदना बने वो प्रारब्ध वेदने रूप है नया कर्म का हेतु प्रारब्ध को खत्म करते हैं पूर्व कर्म को खत्म करते हैं वेदना के माध्यम से नया कर्म नहीं मानते। उस प्रकार की प्रतिकूलता आई तो यही कहेंगे अच्छा हुआ ये पुराना कर्ज है वो दे दिया हिसाब किताब साफ खाता को चुकता कर दिया तो उसमें उसको दुख नहीं होता। जैसे कोई आदमी ने कर्ज कर लिया कोई परिस्थिति बस परिस्थिति अच्छी होगी तो वो आसान आदमी लेने को आता है तो बहुत अच्छा हुआ अब आ गए तो मेरा नहीं आते तो मुझे चला के आना पड़ता तो ऐसे हम प्रयोग करते हैं तपश्चर्या संधि क्यों करते हैं वेदना नहीं आती है तो बुलाते हैं उसको कि जो भी भीतर में रह गई है उसको उदीर्णा करके ले आते हैं उदय नहीं आता तो उदीर्णा कर लेते हैं हिसाब किताब को साफ करना ही है आना तो देना है देना जिसको ऐसी स्थिति में दुख होता है वो अपने नाप से नापता है, उनका तो अभिप्राय पहले से बदला हुआ है, उसमें क्या आपत्ति। लेने को आएगा उसको बोलेगा तुमको व्यास सीमित बिना है, मीडियम है ऐसा, मैं तुम्हारा पैसा दूधे धोने आप पास है, पानी से धो करके नहीं दूध में धो करके देना है ऐसा, मतलब उस देने में होश है, उत्साह है, वो राजी है, खुशी है, दुखी नहीं है। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का उत्तर मात्र दिया है, लेना है दूसरा प्रश्न, इतना ही देना था। पेज में लिखा है मुंबई के क्षेत्र के हिसाब से अपना अभिप्राय दे रहे हैं, 547 क्षेत्र प्रति कहीं द्वेष परिणाम नहीं, तथापि यहाँ पर संघ का विशेष कारण है, बिना प्रवृत्ति का बिना प्रयोजन अत्र रहना कुछ भी आत्मा को ऐसे लाभ का कारण नहीं है ऐसा जानकर इस क्षेत्र से निवृत्ति का विचार रहता है, और यह प्रवृत्ति भी निज बुद्धि से प्रयोजनभूत किसी भी प्रकार से लगती नहीं। जो प्रवृत्ति कर रहे हैं वो अपनी बुद्धि से तो कोई नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से प्रयोजनभूत हमारा कोई प्रयोजन तो उसमें है नहीं, फालतू वेट जिसको कहते हैं, वेट को वेट ही कहते हैं ना,
बेकार।
तथापि उदय के अनुसार वर्तने का ज्ञानी का उपदेश को अंगीकार करके उदय वेदने के लिए प्रवृत्ति का योग बैठते हैं, प्रवृत्ति का त्याग क्यों नहीं करते, ये कारण
दूसरा
जो प्रेदी पे हमारा सिद्ध शुरू से सूर्य उदय अस्तता रहित है, मात्र लोगों को चक्षु मर्यादा से बाहर भरते तभी अस्त, और चक्षु मर्यादा में भरते तभी उदय, ऐसा भाषित होता है। खुद सूर्य का उदय अस्त नहीं होता, परंतु सूर्य में उदय अस्त नहीं है। वैसे ही ज्ञानी है, सभी प्रसंग में जैसे हैं वैसे हैं, मात्र प्रसंग की मर्यादा उपरांत लोगों का ज्ञान नहीं, इसलिए उस प्रसंग में अपने जैसी दशा हो सकती है वैसी दशा ज्ञानी के बारे में कल्पना करते हैं। यही कल्पना ज्ञानी का परम ऐसा आत्मपना, परितोषपना, मुक्तपना वो जीव को जानने में नहीं आने देता, ऐसा जानना योग्य है। क्या
परिस्थिति
क्या नहीं समझ, तो अपना जैसा अनुभव होता है ऐसा उनके लिए कल्पना करते हैं। सभी प्रसंग में जैसे हैं वैसे हैं, सिद्धांत
जैसे उदय और अस्त से रहित है,
सुबह में भी सूर्य जैसा है वैसा है, दोपहर को भी जैसा है वैसा है, शाम को वैसा है, गर्मी क्यों लगती लगती दोपहर को, जो सुबह है उसके जो किरण आते हैं स्लैंट ऊपर डायरेक्ट आते हैं, अंतर में फर्क है, सूर्य में फर्क नहीं है, अपना अंतर में फर्क है।
अस्त भी नहीं है, रात भी सूर्य के लिए तो कोई बाधक नहीं, रात तो प्रतीक्षा से रात है, सूर्य में तो कहाँ रात का होता है प्रश्न। तीसरी का ये दूसरा तीसरा पैराग्राफ है
परितोषक क्या वाच्य
तृप्तपणा, आत्मपणा, तृप्तपणा, मुक्तपणा, ज्ञानी पुरुष का परम ऐसा आत्मपणा, आत्मभाव, परम आत्मभाव में वो स्थित है, पर तृप्ति में है, पर मुक्त है, भिन्न है, इसकी जो कलप चली है अपने परिणति का जो है अनुभव उसको
जिस प्रकार से प्रारब्ध का क्रम उदय होता है,
जिस प्रकार से प्रारब्ध का क्रम उदय होता है उसी प्रकार से हाल बदलते हैं, उसको हम क्रम नहीं बदलना है, हमें जो भी क्रमशः उदय आने का कुदरत के हिसाब से है ऐसा होते रहो, हमें कोई उसमें व्यवहार करने की बुद्धि नहीं है, और ऐसा बरतना वो किसी प्रकार से सुगम भाषित होता है तो ये ठीक है, तो नेचुरली जो बात सेट हो रही है वही अच्छा है, हम क्यों नेचर को बदलना चाहेंगे, क्या कारण है, कोई विषमपणा है क्या, कोई विषमता नहीं उसके साथ,
ऐसे प्रभाव ना हो, ऐसा कुछ हो, ऐसा ना हो, ऐसा
कुछ नहीं, जो भी होता ही रहेगा
तो उनको सुगम भाषित होता है।
पंचम काल में ऐसी विचित्रता नहीं होगी तो यही आश्चर्य है, विचित्रता होगा होना ये आश्चर्य नहीं है।
यद्यपि हमारा चित्त ठाकुर साहब को मिलने संबंधित विगत आज का पत्र के विषय में लिखा, परंतु प्रारब्ध कर्म ऐसा नहीं वर्तता, उदीर्णा कर सकते हैं ऐसी अशुगम वृत्ति उत्पन्न होती नहीं। ऐसे कार्यों में उदीर्णा करके हमें नहीं जाना है। यद्यपि हमारा चित्त नेत्र जैसा है, नेत्र में बीजा दूसरे अवयव की तरह एक रजकण भी सहन नहीं हो सकता। दूसरा अवयव रूप हमारा चित्त है, मैंने वो कुछ भी सहन करता है। दूसरा अवयव रूप अन्य चित्त, अन्य मैंने दूसरों का चित्त है, हमारा चित्त ऐसा नहीं है। हमारा चित्त तो नेत्र जैसा है, नेत्र में एक कण आता है तो नहीं पूछा। दूसरों का जो अवयव है चित्त है वो सहन कर सकते हैं, क्योंकि उनका नेत्र जैसा चित्त नहीं है तो सहन करे तो कर। मैंने कुछ भी काम करना, उपाधि का बोझा उठाना, ये हमारा सब नहीं हो सकता। लोगों को तो कार्य करने में उत्साह रहता है, उत्साह आता है, ये करे वो करे, ये करे वो करे, अच्छा नहीं लगता। कोई भी कार्य बाह्य कार्य करने में इतना बोझा महसूस होता है, नेत्र के पास कुछ काम करवाना, नेत्र तो देखने का काम करता है, प्रवृत्ति थोड़ा कर सकता है, हमारा चित्त कोई प्रवृत्ति नहीं कर सकता। फिर भी कोई आ पड़ता है तो बहुत मजा लगता है, यही के बिता देता है। हमको वर्तता है ऐसा जो चित्त, वह नेत्र रूप है, उसके उसमें वाणी का उठना, दूसरों को समझाना, यह करना और यह नहीं करना, ऐसी ऐसा विचार करना, वो मांड मांड मैंने बहुत कोशिश से उतना कर सकते हैं। बहुत सी क्रियाएं तो शून्यपना की तरह होती है, हमारे मुँह तो शून्य हो जाते हैं, उपयोग चलता है लेकिन लक्ष्य नहीं है, तो लक्ष्य शून्य उपयोग चलता है। ऐसी स्थिति होने पर भी उपाधि योग वो बलवान रूप से आराधते हैं, फिर भी ये धंधा व्यवसाय वगैरह में बलवान पने से आराधते हैं, बहुत उसमें ताकत लगाते हैं, बहुत सहन कर लेते हैं।
ये परिणाम जो बोझा सहन करता है उसको बलपूर्वक
क्या है? इस उपाधि योग तो बलवान पने से आराधते हैं, हम बलवान उपाधि करते हैं तो उसमें हमारी जो ताकत है काफी लगाते हैं, जब कर सकते हैं बहुत प्रसाद सहित वो बात होती है।
अनिच्छा पूर्वक कोई काम करना
जैसा बलजोरी से, ये वेदना वेदना विकट,
ये वेदन करना
हाँ विकट है, ऐसा कम विकटता उसकी कम नहीं लगती है, मैंने बहुत लगती है विकटता, क्योंकि नेत्र के पास जमीन की रेती उपाड़ने का कार्य होने रूप होता है। एक कण जो सहन नहीं कर सकता तो उसको जमीन से रेती उठाने के काम दिया जाता है, कितना असह्य परिस्थिति में उसको करना पड़ता है, उतना असह्य लगता है जो कार्य उपाधि पर जो आई हुई है उतना असह्य परिणाम।
तो यहाँ प्रथम तो प्रभाव आ रहा है ठाकुर साहब को चाहते थे
इसलिए तो अशुभ प्रवृत्ति की बात होता है,
ये जो करना पड़ता है ये बहुत खुशी से करता है, इससे अधिक हम क्या करें, ऐसा क्या है कि अगले को जिज्ञासा हो गए बात अलग है, देखो जिज्ञासा नहीं हो उनको खुद चला के वहां जाना समझाना परिणाम क्या है। सामने वाले की पात्रता नहीं दिखे बेकार क्यों मेहनत करे, उतनी पात्रता से फालतू परिश्रम कर। तुषा तुमने पानी पाया नहीं मेहनत कर दी, तुषातुर हो तो उसको पानी पिलाना है, इतना परिश्रम, जब उनको तुषा ही नहीं लगी है तो पानी पिलाने का क्या परिश्रम, पिलाएंगे तो पियेंगे नहीं, देंगे तो पियेंगे। आँख के पास जमीन की रेती उपाड़ने जैसा कार्य होता है, वो जैसे दुख दुख से अत्यंत दुख से होना विकट है, वैसे चित्त से उपाधि का परिणाम रूप होना बराबर है, उतनी वेदना है सुगमपना से स्थित चित्त होने से। वेदना को भी सम्यक प्रकाश से वेदता है, अखंड समाधि पड़ने से वेदता है, यह बात लिखने का आशय उतना ही है। यह उतना उत्कृष्ट वैराग्य के वैराग्य में भी इतना उपाधि युग वेदना का वो प्रसंग है, उसको कैसा गिनना, और ये सब क्यों करने में आता है, जानते हुए भी क्यों नहीं छोड़ देते, जब ये फालतू का काम है जानते हुए भी क्यों नहीं छोड़ देते, ये सब विचार में योग्य है, वो विशेष विचार में योग्य है, ये गहन बात है। ऊपर ऊपर से जितनी शादी से देखे परस्पर विरोधी परिणाम कैसे टकराते हैं, निवृत्त होना है अपने पास, निवृत्त नहीं हो पाते हैं ये बात जरूर, प्रवृत्ति करते हैं बहुत निराग्य है, कोई प्रवृत्ति करते हैं ऐसा नहीं, जानते हैं इसमें हमारा कोई प्रयोजन नहीं, फालतू समय भी लग जाए फिर भी नहीं छोड़ते हैं, विचार नहीं, ये सब बात का सही रूप से विचार करें तो ज्ञानी की दिशा को समझ सकते हैं, चारों ओर से चारों पर सही विचार करें तो उसको दिशा समझ आती है, तो उसमें किस प्रकार की गहनता है, किस प्रकार की सम्यक परिणाम है सभी और के, ये सारी की सारी बात तब पहचान है, तो शंका ऐसा क्यों कोई आश्चर्य कोई प्रश्न कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ऐसा अच्छा बोध मिलेगा कि अपना आत्मार्थ कैसा हो रहा है वो भी इसलिए कहते हैं कि अगर उसको पहचानते हैं फिर गाड़ी सीधी लाइन पर आ जाती है, नहीं पहचानते तो कई प्रकार की विषमता दिखने से शंका में रहना पड़ता है।
परिणाम में फेरफार करने का जो दिखता है कि बिजनेस में इसमें जुड़ते हैं, उससे हटने का भाव है, हटना चाहते हैं उस समय में, कहते नहीं इसका मतलब तो परिणाम में फेरफार करने कर नहीं सकते हैं, ऐसा जो ज्ञान बढ़ सकता है इसके कारण से उदासीन रहते हैं, उससे जो भी हो रहा है जैसा भी हो रहा है वो बैठे बैठे मुख में लीला देखते हैं, बैठे बैठे मुख में जगत का लीला देखते हैं।